हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस आखिरी सेशन में। आप कई दिनों से सुनते आए हैं भगवद गीता के अलग अलग जो विषय हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ज्ञानम तेहम सवे ज्ञानम। तो इतने दिनों तक हमने ज्ञान तो अर्जन किया, अलग अलग विषयों के बारे में सुने, और लेकिन यदि उस ज्ञान का जो इस्तेमाल है यदि हम अपने जीवन में यदि कर नहीं पाए तो वो ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भगवद गीता में कई प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं, और फाइनली सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो मैं ये बोल रहा हूँ ये कोई थेरोटिकल नहीं है, केवल इसको अपने जीवन में भी उचित रूप से लागू किया जा सकता है। तो फिर अर्जुन को भगवान भगवद गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं, और जो टॉप मोस्ट योगा है जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं उसका वर्णन करते हैं। तो अधिकतर लोग जनरली समाज में पूछते हैं कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है भगवान की, भगवान के बिना भी तो हमारा जीवन बड़ा सुव्यवस्थित जा रहा है, शांति है एक प्रकार की, ठीक ठाक से सब कुछ हम कर रहे हैं, रोज हम अपने ऑफिस के कार्यों में जा रहे हैं, घर में यदि हाउस वाइफ्स हैं तो वो भी सोचती है कि हम सही प्रकार से अपने घर के कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं कि हम अपना पढ़ाई लिखाई आदि कर रहे हैं, तो फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में भगवान की। तो लेकिन शास्त्र हमें कहते हैं कि वास्तव में भगवान की आवश्यकता हर एक जीव के जीवन में परम आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो किसी समस्या से ग्रसित नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास, जैसे आपने अलग अलग सेशंस में सुना है कि अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। लेकिन भगवान का होना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? तो भगवान का होना इसलिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक बार अपने घर में बैठा था एक रूम के अंदर, और वो सोच रहा था, जैसे वो सोचने लगा तो अचानक उसको एक आकाशवाणी आवाज़ सुनाई दिया। उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो जैसे उसने सोचा तो वो आवाज़ को सुनने लगा गंभीरता से, और उस आवाज़ में उसने सुना कि तुम उठो, क्यों बैठे हो काफ़ी समय से, उठो और बाहर निकलो, बाहर जाकर जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ को क्या करो, पुश करो। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये क्या है, तो फिर वो व्यक्ति निकला बाहर अपने सारे मसल्स को टाइट करते हुए, रोज सुबह जाता था और उस पहाड़ को पुश करता था, सुबह से लेकर शाम तक उस पहाड़ को पुश करने में लगा रहता था। तो ऐसे बहुत दिन बीते, हर रोज इसी प्रकार का कार्य वो कर रहा था। लेकिन जब 6 महीने हुए हैं तो वो सोचा, उसने वो बैठ गया और उसने सोचा कि मैं ये सब कर रहा हूँ, इसका कुछ लाभ तो है, कुछ लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। तो अपने घुटनों पर गिर गया और उसने भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आपकी आवाज़ सुनी थी मैंने और आपकी आवाज़ के अनुसार मैंने क्या किया, रोज सुबह से लेकर शाम तक उस पहाड़ को पुश कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। तो ऐसा जब वो सोच रहा था, बोल रहा था भगवान के प्रति, तो उस समय फिर से उसे आवाज़ सुनाई दी। तो कहा कि उठो, बाथरूम में जाकर देखो। अभी उसने सोचा बाथरूम में जाकर देखो, क्या देखे बाथरूम में जाकर। तो वो व्यक्ति सोचा चलो कहाँ है बाथरूम में जाकर देखो। तो वो वहाँ से उठता है और जाता है और बाथरूम में देखता है शीशे के सामने। उसे कहा, उस आवाज़ ने कहा कि आप जाओ बाथरूम में और शीशे के सामने देखो। तो जैसे वो गया शीशे से सामने देखा उसने, तो उस आवाज़ उसको कहने लगी कि तुम तो पहले बहुत दुबले पतले थे लेकिन अभी क्या हो गए हो, बलशाली हो गए हो, आप अपने मसल्स को देखो। तो वो सोच रहा था कि मैं तो कब से पुश कर रहा हूँ पहाड़ को, लेकिन पहाड़ मेरे सामने से हिल नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे बड़े बड़े कष्टों के पहाड़ आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कष्ट रूपी पहाड़ नहीं है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कष्ट दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़िता या कष्ट सौख्य निरंतरम। कौन व्यक्ति जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, कोई नहीं है। तो जब इस प्रकार के पहाड़ों के पहाड़ के बारे में वो व्यक्ति भगवान को कह रहा था कि मैं पुश कर रहा हूँ लेकिन वो हिल नहीं रहा है, तो भगवान ने कहा कि मेरा ये पुश करना केवल तुम्हारा काम है, लेकिन उसको हिलाना या नहीं हिलाना वो किसका काम है, मेरा काम है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई प्रकार के पहाड़ रूपी कष्ट आते हैं, लेकिन हमें उन कष्टों का सामना करने की शक्ति कहाँ से मिलती है, भगवान से मिलती है। यदि भगवान हमारे जीवन में हो, चाहे वो कष्ट रूपी पहाड़ या पहाड़ रूपी जो कष्ट है वो हमारे सामने से हिले या ना हिले, लेकिन उसको फेस करने का सामर्थ्य, फेस करने की जो शक्ति है वो हमारे पास आती है। इसलिए भगवान का होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो पहली चीज़ यही है, पहला पॉइंट यही है कि भगवान हमारे जीवन से कष्टों को दूर पूर्ण रूप से कर सकते हैं, या फिर वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं उन कष्टों का सामना करने के लिए। जनरली लोग, व्यक्ति टूट जाता है, व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा यदि कष्ट आता है, टूट के वो गिर जाता है और फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन जैसे ही भगवत चेतना उसके जीवन में आती है तो व्यक्ति के पास उसका सामना करने के बल या सामना करने की जो शक्ति है उसके पास आ जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान का होना परम आवश्यक है हमारे जीवन में, और यदि भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो हम अनुभव कर पाते हैं। क्या चीज़ का अनुभव कर पाते हैं? शांति का। किस चीज़ का? शांति। यदि भगवान को हम जानेंगे तभी हम वास्तव में शांति को जान सकते हैं। और शांति के ऊपर जो दूसरा स्तर है, भगवान गीता में कहते हैं, वो है सुख। अशांतशः कुतः सुखम। यदि व्यक्ति के पास शांति नहीं है लाइफ में तो वो सुखी नहीं हो सकता। सुख की जो सीढ़ी वो ऊपर है और शांति की सीढ़ी नीचे है। तो शांति में जब पहला कदम रखेगा तब वो दूसरा कदम सुख में रख सकता है। तो इसलिए सेकंड चीज भगवान के हमारे जीवन में होना ये परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे जीवन में होते हैं तो हमारे पास शांति को हम अनुभव कर सकते हैं और शांति को हम समझ सकते हैं। तो तीसरी चीज शास्त्र कहते हैं कि भगवान का होना हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सब लोग परमानेंटली सुखी होना चाहते हैं। कौन चाहता है सुखी होना परमानेंटली? हाथ ऊपर कीजिए, है कि नहीं? हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, रेल भवन में आते हैं, किस लिए आते हैं? परमानेंटली सुखी होना एक दिन, तो वैसे ही भगवान हमारे जीवन में आने का मतलब है, होने का मतलब है कि हम वास्तव में परमानेंटली सुखी हो सकते हैं या आनंदित हो सकते हैं। जैसे ये हाथ है, तो ये जो हाथ है इसकी जो उंगलियां हैं, एक उंगली कट जाए और एक उंगली अलग हो जाए, और ये उंगली कहे कि इस हाथ से अलग होकर मैं आनंद अनुभव करूंगी, हाथ से अलग होकर मैं रसगुल्ला खा लूंगी या अलग अलग स्वीट्स का उपभोग करूंगी, तो ये संभव हो सकता है उंगली को? यदि उंगली हाथ से अलग हो जाए तो वो उसके लिए उचित नहीं है। तो उंगली का कोई लाभ नहीं है यदि वो हाथ से अलग हो जाती है, लेकिन ये उंगली यदि आनंद अनुभव करना चाहती है, सुखी होना चाहती है परमानेंटली, तो वो हमेशा हाथ के साथ कनेक्ट रहे, यही उसका स्वार्थ है, यही उसका परम लाभ है। तो उसी प्रकार से हम यदि परम सुख चाहते हैं या परमानेंट शांति या परमानेंट सुख की अभिलाषा रखते हैं, तो हमें ये परम आवश्यक है कि हमें सदैव भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। तो आज के दिन में हम पूरे समय में इसी पर ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो भगवत गीता है जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और क्या परम उपाय हैं जिससे हम भगवान को, भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सर्वसाधारण रूप से आप देखो, हम जब रोज सुबह स्नान करते हैं और शीशे के सामने जाते हैं, सर में बाल हो या ना हो, लेकिन क्या करते हैं, अपने बालों पर हाथ लगाते रहते हैं। यदि ये बाल इस सर के साथ कनेक्ट है इसलिए कितने सुंदर लग रहे हैं। वही बाल हम नाई के पास जाते हैं और नाई उसका हेड शेव कर लेता है अच्छे से और वो गिर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे इतने वैल्यूएबल, इतने महत्वपूर्ण मेरे बाल थे, थोड़ा बैग में थैले में डालकर ले जाता हूँ घर में। ऐसा कोई सोचता है व्यक्ति? नहीं। ऐसे गिरे हुए बालों को देखना भी हम पसंद नहीं करते। वही बाल गलती से यदि हमारे प्रसाद में, भोजन में आ जाता है, तो हम पूरा भोजन फेंक देते हैं। तो मतलब बाल तब तक सुंदर है जब तक वो किससे कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, सर से कनेक्ट है, हमारे सिर से। तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान से संबंधित रहेंगे, तब वास्तव में हम महसूस करेंगे कि हम एक सुखमय जीवन या सुख या शांति का परमानेंटली अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र हमें हमेशा अलग अलग उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, पानी से अलग मछली का जीवन नहीं है। कोई व्यक्ति उसे कितना पुकारे, मछली को आओ आपके लिए बहुत अच्छा हम रहने की व्यवस्था करते हैं, पीने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो मछली नहीं आ सकती। मछली तो सदैव चाहेगी कि मेरा जो जीवन है वो पानी है, जल है। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान से कभी भी अपने जीवन में अलग नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से अपने जीवन में एक प्रकार से भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन उसका ढूंढने का जो तरीका है, भगवान के साथ संबंध बनाने का जो तरीका है, वो उचित नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का हमारे जीवन में होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान हमारे जीवन में होते हैं तो नेचुरली हम सुखमय जीवन की अनुभूति कर पाते हैं। और जो चौथी चीज जो शास्त्र कहते हैं कि भगवान का हमारे जीवन में होना, इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जैसे शुगर है, शुगर कैसी है, मीठी है। नमक कैसा है, यदि आपके पास चिली दी जाए, मिर्च दी जाए, तो मिर्च कैसी है, तो इसको क्या कहेंगे, उसके उसका ये मिर्च का क्या कहेंगे, तीखापन, गुण है। तो उसी को कहते हैं संस्कृत में स्वभाव है या फिर गुण धर्म है, जो हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है, जिसके बारे में आपने अलग अलग सेशन में सुना है, तो आत्मा का भी एक अपना गुण धर्म है, जिस गुण धर्म को आत्मा से अलग करना असंभव है। आत्मा को अपने उस नेचर से, अपने उस स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। तो वो स्वभाव या वो नेचर क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, बताइए। आत्मा का क्या स्वभाव हो सकता है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्या ऐसा गुण धर्म है? परमात्मा, परमात्मा के साथ उनका संबंध है और कोई? आत्मा का ऐसा क्या गुण धर्म है? जैसे शुगर का गुण धर्म है मीठापन, मिर्च का गुण धर्म है तीखापन, पानी का गुण धर्म है तरलता, तो आत्मा का गुण धर्म क्या है? शांत स्वरूप और अविनाशी। तो शास्त्र कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है? सेवा करना। क्या करना? कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो बालक हो, बच्चा हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन एक चीज या किसी भी धर्म का क्यों ना हो जो सो कॉल्ड धर्म है, लेकिन उसके अंदर एक गुण निश्चित है और वो गुण धर्म क्या है? सेवा करना। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। बच्चे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज आदि की सेवा कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तो इसके अलग अलग धर्म हो सकते हैं, नैतिक धर्म हो सकते हैं, लेकिन जो परम धर्म क्या है? आत्मा का सेवा करना। और वो सेवा किसकी करना? भगवान की सेवा करना, ये उसका परम धर्म है। तो इसलिए हमारे जीवन में भगवान का होना परम आवश्यक है। तो पहली चीज क्या थी? भगवान क्यों होने चाहिए हमारे जीवन में? जिसके द्वारा हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं या उन समस्याओं के विरोध में लड़ने के लिए हमारे पास बल आ सकता है। तो इस प्रकार से ये चार जो चीजें हैं जिनका हमने वर्णन किया, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो ये सेशन है, जो कई सारे अपने सेशंस में सुना होगा, पहले शुरुआत में आपने देखा कि हम कौन है, बोलिए सब एक साथ, हम कौन है? हाँ, तो इसके बारे में आपने चर्चा की होगी और सुनी होगी कि हमें भौतिक शरीर नहीं है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है और ये नश्वर है, अनित्य है। ऐसा शरीर जिसमें हम बैठे हुए हैं और हमें शरीर न होकर हम आत्मा हैं। और दूसरी चीज़ क्या आपने सीखी होगी इस अलग अलग सेशंस में कि ये जो आत्मा है, हम यदि आत्मा हैं तो हम कहाँ से आए हैं या किसके अंश हैं? तो हम कहाँ से आए हैं? वास्तव में आध्यात्मिक जगत या भगवान से आए हैं और भगवान के हम शाश्वत अंश हैं। और ऐसा जो आत्मा है जिसको ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। और अभी हम कहाँ हैं? अभी हम भौतिक जगत में हैं। जिस भौतिक जगत का नेचर जिसका वर्णन किया है, दुखालयम अशाश्वतम, उसके बारे में आपने सुना होगा या उसके ऊपर भी काफी समय चर्चा रही होगी कि ऐसे जगत में हम आए हैं कि जहां न चाहते हुए भी हमारे पीछे अलग अलग प्रकार के कष्ट लगे हुए हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये जो बुढ़ापा है एक राक्षसनी के समान है जो हमारे सामने खड़ा है। और ये जो अलग अलग प्रकार के कष्ट है जीवन में, वो शत्रुओं के भांति एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं, एक के बाद एक हमें अटैक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के कष्ट इस शरीर के पीछे लगे हैं। तो कई बार शास्त्र शरीर को कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम। ये शरीर भी एक मंदिर है, लेकिन किस चीज का मंदिर है? व्याधियों का मंदिर है, कष्टों का मंदिर है। तो हम इस जगत में आए हैं तो हम यहाँ क्यों हैं? क्यों है हम यहाँ? आप में से कोई बताए, हम क्यों हैं इस जगत में? क्योंकि हम भगवान से अलग स्वतंत्र होकर इस जगत में रहना चाहते हैं। और जब हम भगवान से अलग होकर स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। जब गवर्नमेंट के रूल्स का फॉलो नहीं करता कोई व्यक्ति नागरिक, तो उसको सही स्थान में रहना नहीं अलाउ किया जाता, उसके लिए एक स्पेशल स्थान क्रिएट किया जाता है और वो क्या है? जेल है, कारागृह है। तो उसी प्रकार से हम भगवान से अलग होकर रहना चाहते हैं स्वतंत्र होकर, तो हमारे लिए एक सुव्यवस्था की है। ये भौतिक जगत जो काराग्रह के समान है या जिसको सुधार ग्रह कहा जा सकता है, और आगे क्या है, क्यों फिर हम इस जगत में आते तो हमें अलग अलग शरीर क्यों प्रदान किए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें हमारे अंदर भगवान से अलग होकर उपभोग करने की तीव्र इच्छा है, भोग करने की जो भावना है, इच्छा है, जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम अलग अलग कर्म करते हैं, अधिक से अधिक पाप कर्मों में हम अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि पापमय इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम पाप कर्म करते हैं, और ऐसे कर्म के कारण उसके जो रिएक्शंस हैं हमें भुगतने पड़ते हैं, और उन रिएक्शंस के कारण हमें अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं जिनमें हमें गुजरना पड़ता है। तो कब तक ये चलता रहेगा, हजारों सालों तक, अनलिमिटेड ईयर्स तक ये जो श्रृंखला है वो बनी रहेगी, यदि हम इसी प्रकार से अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो ये जो श्रृंखला है मिलियंस के सालों के लिए कंटिन्यू बनी रहेगी। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि अभी इतना सारा हमने तो सुन लिया, इतने सारे सेशन हमने 4-5 दिन के लिए अटेंड किया है, तो फिर अभी करना क्या है, हमने ये भी जान लिया कि ये भौतिक जगत दुखालय है, मैं इस जगत का अंश नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमने प्राप्त किया, लेकिन आप क्या करो, हमें आगे बताओ, आगे क्या है, इससे आगे क्या है जिसके द्वारा हम ये जो भयावह स्थिति है भौतिक जीवन के जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, हाँ, तो उसका जो चर्चा है आज हम थोड़े समय के लिए करेंगे। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, हाँ, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेल भवन के आपसे रिलेटेड है, क्या है, ट्रेन जंक्शन है, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। तो वैसे ही मनुष्य जीवन भी एक बड़ा जंक्शन है जिसमें अलग अलग डेस्टिनेशन में आप जा सकते हो, अलग अलग यात्राओं में निकल सकते हो। तो जैसे रेल जंक्शन में आप जाते हो तो अलग अलग दूरी के लिए आप अलग अलग ट्रेन लेकर पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन पर, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है और जिसमें आप 4 जगहों में जा सकते हो। या तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ प्राप्त करके आप या तो उच्च लोकों में जा सकते हो, स्वर्ग आदि, जिसमें आप देवता बन सकते हो, देवता का शरीर धारण कर सकते हो, या फिर भगवद गीता में भगवान कहते कि इसी जगत में आप रह सकते हो, एक मनुष्य के रूप में फिर से जन्म ग्रहण कर सकते हो, या फिर नीचे और गिर सकते हो, पशु के जीवन में जा सकते हो, कुत्ते बिल्ली सुअर चूहे आदि के जीवन को आप प्राप्त कर सकते हो, और या फिर चौथी चीज क्या है, आप भगवान के धाम वापस जा सकते हो जो शाश्वत सुखमय और आनंदमय स्थान है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत मूल्यवान एक वस्तु है जो हर एक व्यक्ति के लिए मिली है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, व्यक्ति को इस मूल्यवान देह की जो मूल्यता है उसके बारे में जानना होगा, उसको स्वीकार करना होगा, तभी व्यक्ति सोच सकता है। तो इसलिए शास्त्र आगे कहते हैं यदि हम स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाह रहे हैं, इस मनुष्य जीवन दुखालय है, पशु का जीवन और घृणित है, तो हमें भगवान के पास वापस जाना है जो हमारा शाश्वत स्थान है, तो हम कैसे वापस जा सकते हैं भगवान की ओर, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही उपाय है, क्या उपाय है, बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस जाना। जिस प्रकार से आपने सुना होगा पहले सेशंस में, कोई धनवान व्यक्ति का बच्चा सड़क में जाता है घर छोड़कर, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता जब तक वो वापस अपने पिता के पास नहीं आता, तो वो शाश्वत सुख अनुभव कर सकता है। तो उसी प्रकार से हम जब तक वापस भगवान के पास नहीं जाते तब तक हम इस भौतिक जगत में सदैव चिंताओं से घिरे रहेंगे। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति के पास चिंताएं हैं। आजकल व्यक्ति के पास भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं लेकिन शांति या सुख है ये असंभव है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम वास्तव में स्वतंत्र जीवन चाहते हैं तो हमें उस प्रोसेस को सीखना होगा कि किस प्रकार से ऐसे कार्य करने से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। आपने कल के सेशन में सुना होगा अलग अलग जो कर्माज हैं, हाँ कौन कौन से कर्माज हैं, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है और अकर्म है। तो भगवान के पास वापस जाने के लिए हमें जो भक्तिमय कर्मा है उसको समझना होगा। इसके बारे में भी कल चर्चा की होगी, हाँ कि जैसे कोई सोल्जर है तो सोल्जर जब युद्ध करता है और शत्रुओं को परास्त करता है, उन शत्रुओं को मारता है दूसरे सोल्जर्स को, तो वो उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, परमवीर चक्र आदि प्रदान करके उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन वही सोल्जर यदि क्या करे, अपने हित के लिए, वहां वो देश के हित के लिए लड़ रहा है तो उसको सम्मानित किया जाता है, लेकिन वही सोल्जर यदि अपने घर जाए और अपने हित के लिए, स्वयं की तुष्टि के लिए किसी और का मर्डर करता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो इसी प्रकार से है, कर्म वही है, यदि उनका इस्तेमाल हम अपने संतुष्टि के लिए करते हैं तो वो हमें बांधते हैं, नई रिएक्शंस क्रिएट करते हैं और जिसके द्वारा हम अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को इनवाइट करते हैं, चिंताओं को इनवाइट करते हैं और हम सोचते हैं कि फिर अरे मेरे जीवन में ये ऐसी चीज आई कैसे। तो इसलिए हमें यदि वापस भगवान की ओर जाना है तो एक ही उपाय है कि हमें क्या करना होगा, भक्तिमय जो कर्म है या जिसको कल आपने सुना तीसरी जो कैटेगरी है कर्म के, जिसे कहा जाता है अकर्म, तो ऐसे अकर्म को हमें स्वीकारना होगा। तो ऐसे अकर्म को हमें सोचना होगा या समझना होगा कि ऐसे कर्म करूं जिसके द्वारा मैं फिर से इस भौतिक बंधन में ना पड़ूं, कर्ममय जो बंधन श्रृंखला है उससे परमानेंटली मुक्त हो जाऊं। हाँ, तो वो कर्म इसी प्रकार से हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति था जिसने नया नया उसका विवाह हुआ था और उसने बड़ा सा महल बना लिया और पेंटिंग वगैरह किया घर का, और उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे घर को छुएगा या उसके ऊपर कुछ पेंट करेगा या लिखेगा तो मैं उस व्यक्ति को दंडित करूँगा, मार डालूंगा। तो दो बच्चों ने, वो अपनी पत्नी से बोल रहा था ये सारी चीज़ें, हाँ बहुत चुपके से बातें हो रही थी, तो दो बच्चे सुन रहे थे दूर से गार्डन में। तो दो बच्चों ने सुना तो एक बच्चे ने सोचा, अरे देखो तुम कर सकते हो ये काम, जाकर उस घर को टच करके आ जाओ। तो एक बच्चा कहता, टच करके क्या, मैं उसके ऊपर लिख के आ जाऊंगा। तो कहता, मैं तुम्हें ना पैसे दे दूंगा। तो वो बच्चा दूसरा बहुत धाड़सी था या उत्साही था, तो वो गया, दौड़ते हुए गया और वहां जाकर लिख के आ गया। जैसे लिख रहा था, वापस आ रहा था, तो घर का जो मालिक है अपने पत्नी के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कहा, अरे अरे बेटे इधर आओ। पत्नी को कहा, अभी वो शेठ है, तो शेठानी को बोला कि जाओ घर से लड्डू लेके आओ। क्या लेके आओ, लड्डू लेके आओ। और बच्चे को बुलाया, लड्डू खिलाए और उसको थोड़ा पैसे भी दे दिए, और वो बच्चा नाचते हुए वापस आया। उधर दूसरा जो उसका मित्र है वो सोचने लगा, अरे ये क्या है, हाँ कि उसको बोला, क्या ऐसे तुमने लिख दिया कि वो व्यक्ति तो जान लेने वाला है, जो भी व्यक्ति उसके घर को टच भी करेगा या उसके ऊपर कुछ लिखेगा। तो उसने कहा, मैंने वहाँ लिखा स्टिक नो बिल्स, कि उसमें क्या नहीं कर सकते आप कुछ, और हिंदी क्या कहेंगे उसको, इश्तहार लगाना मना है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ है, यदि वो बच्चा जानता है ओनर का इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है और उस कार्य से उसको रिवार्ड मिलता है, तो उसी प्रकार से कार्य वही है। हम अपने रेगुलर लाइफ में सारे एक्टिविटीज करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ जानना होगा कि भगवान का इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के अनुपात में, उसके अनुसार हम यदि कार्य करते हैं, अपने कर्मों को सुव्यवस्थित रूप से करते हैं तो क्या होगा, हम दंडित नहीं होंगे बल्कि हमें रिवार्ड मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये अकर्म है जिसको करने से हम इस भौतिक जगत के बंधन में नहीं पड़ते हैं या भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे क्या चीजें हैं जिसको करने से हम हाँ इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि आपको क्या करना होगा अर्जुन, वो कहते कि हे अर्जुन, तपस्वी व्याधि को योगी, ज्ञानी व्योपि मतोधिक, कर्मी व्याचादि को योगी, तस्माद योगी भवार्जुन, कि हे अर्जुन तुम्हें योगी बनना पड़ेगा। अभी ये योगी शब्द तो हम सबने सुना है, किसने नहीं सुना, सुना है सबने, हाथ ऊपर कीजिए, सबने सुना है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वास्तव में हे अर्जुन तुम्हें योगी बनना पड़ेगा। और योगी शब्द सुनते हम डर जाते हैं, हम तो भोगी बनना चाहते हैं और मैगी खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम भोगी बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे योगी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ सही नहीं है। तो बल्कि अर्जुन भगवद गीता को सुन रहा था कृष्ण के द्वारा, और कृष्ण उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे कि अर्जुन तुम योगी बनो, और योगी बनने से ही तुम वास्तव में मेरी ओर आ सकते हो। हाँ तो अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये जो भगवद गीता है वो मेरे लिए नहीं है, ये भगवद गीता तो भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन के लिए बोली है और ये अर्जुन के लिए है, मेरा उससे कुछ रिश्ता नहीं है, मैं भगवद गीता से दूर रहूंगा। जनरली लोग यही कहते हैं, दूर भागते भगवद गीता से। जैसे भगवद गीता का नाम लो, जैसे हम मुंबई में थे तो पुस्तक वितरण करने के लिए गए थे, एक रेलवे स्टेशन से जा रहे थे तो कोई एक युद्ध दिखाई दिया तो उसके हाथ में भगवद गीता ऐसे पकड़नी चाहे तो वो 5 फुट दूर भाग गया, ऐसे लगा कि मैं उसके हाथ में कोई कोबरा दे रहा हूँ, डर के भाग रहा था। तो मतलब व्यक्ति भगवद गीता, भगवान, टेम्पल आदि का नाम सुनते हैं तो उनके शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, डरने लगते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं कि किसी चीज का हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हमेशा भय है। और भय क्या है कि मुझसे चीजें छूट ना जाए, एक ही भय है। अभी इतना मेहनत करके दिन रात व्यक्ति जीवन भर इकट्ठा करते रहता है, इकट्ठा करते रहता है, तो जब छोड़ने की बात आती है तो उसे डाइजेस्ट नहीं होती है, वो डर जाता है। तो वैसे सोचते हैं हम कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसमें क्या है, त्याग। व्यक्ति क्या सोचता है, जनरली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ने की बात नहीं है। और ये जो शिक्षा है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो एक माध्यम है, तो ये जो शिक्षा ओनली अर्जुन के लिए नहीं, तो अर्जुन के द्वारा हमारे लिए है। जैसे आप देखो, जब दूरदर्शन टेलीविजन शुरुआत के दिनों में आया तो दूरदर्शन सिंगल चैनल होता था और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ शो आते थे। हाँ तो कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता था, कैंसर स्पेशलिस्ट, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ तो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रही है वो माता जी और डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो माता जी वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऐसा आप सोचिए, तो उनको पूछ रहे हैं बताइए कैंसर के लक्षण क्या हैं, क्या कारण है, अलग अलग कारण जिसके द्वारा कैंसर होता है, और उसका उपाय भी बताइए। तो डॉक्टर बड़े खुले आनंद से सारे प्रश्न बोलता है फिर नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक वो जो लेडी है, नेक्स्ट वीक जब ये शो शुरू होता है तो उस समय इंटरव्यू लेने वाली सेम रहती है लेकिन डॉक्टर चेंज हो जाता है, फिर एड स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। तो फिर वो लेडी पूछती है बताइए क्या कारण है जिसके द्वारा एड्स होता है, तो फिर दूसरा वो बता दे जाता है, फिर वो पूछती है कि उसके लक्षण क्या है, कैसे समझे कि एड्स हुआ है, फिर उसके उपाय भी पूछती है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति रेगुलर ये हेल्थ शो देखता रहता था, और जब ऐसे 2-3 हफ्ते बचे बीत गए तो सोचता है कि इसकी ही सारी बीमारी आ गई है, यही पूछ रही है सारी बीमारियां किसको है? वो सोचते हैं इसका जीवन कैसे, इसको कैंसर भी हो गया है, एड्स भी हो गया है, इसको ये भी हो गया है। वैसे हमारी स्थिति है, हम सोचते हैं कि ये तो अर्जुन के लिए सारी चीजें, लेकिन वो इंटरव्यू वाली जो लेडी है उसके लिए सारी चीजें हैं नहीं है, वो सर्वसाधारण जनमानस के लिए है जो ये हेल्थ शो देख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हेल्थ शो हो रहा था और वह इंटरव्यू कौन ले रहे थे, जोर से बोलिए कौन, जोर से, अर्जुन ले रहे थे, और वहां स्पेशल डॉक्टर इनवाइट किए गए थे और वो कौन थे, कृष्णा। तो कृष्ण को अर्जुन पूछा जा रहा है, अर्जुन बताओ, ए कृष्ण बताओ ये अलग अलग योग क्या है, मन इतना चंचल क्यों है, ध्यान योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे। भगवद गीता कुछ और नहीं है, भगवत गीता केवल क्वेश्चन और आंसर की बैंक है, क्वेश्चन आंसर बुक है, जिसमें अर्जुन हमारा रोल अदा कर रहा है और भगवान से प्रश्न पूछते जा रहा है और भगवान सारे प्रश्नों के उत्तर सरल रूप से दे रहे हैं। तो वास्तव में जो भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो पूछते जा रहा है और वो भगवत गीता हमारे लिए है। और भगवान कहते हैं योगी बनो, जैसे हम योगी, योगी शब्द आता है तो कुछ ऐसी कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने आती हैं, हाँ, कुछ ऐसे योगाभ्यास आसन नजर आते हैं, ध्यान की मुद्राएं हमारे आंखों के सामने निकलने लगते हैं। अभी हमें तो एक ही आसन पता है, कौन सा आसन? शवासन। कौन सा आसन पता है? बस दोनों आंखें बंद करके लेट जाना और एक दो घंटे के लिए लेट जाना, यह एक ही आसन सारे लोगों को पता है। तो जब हम योगा का बात करते हैं, भगवान कहते योगी बनो, तो योगी का मतलब क्या है वो हमें जानना होगा। कि योगी का मतलब हम तुरंत सोचते हैं कि ध्यान करना होगा या फिर कई प्रकार के आसन करने होंगे। अभी कितना कठिन है, हाँ, पाँव कहाँ तो, हाथ कहाँ तो, नाक कहाँ तो, सर कहाँ, सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें करनी होती है योगा में। तो आजकल का व्यक्ति के लिए चेयर में सही बैठना भी कठिन है, सही बैठना कठिन है कि नहीं? हम तो बिल्कुल लेटना चाहते हैं, हाँ। तो जब योगा का मतलब ध्यान आदि, हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन जब हम योगा का बात करते हैं, योगी बनना या योग, उससे हमें पहले समझना चाहिए कि क्या योग है और क्या योग नहीं है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति जब टेलीविजन खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है तो वहाँ जाकर कहता है कि ये कितने का है ये टेलीविजन सेट, वो दुकानदार कहता है मैं ना मूर्खों को टेलीविजन नहीं बेचता। किसको नहीं बेचता? उसको लगा रही, इसको कैसे पता मैं मूर्ख हूँ। वो भाग के घर आया, एक हफ्ता वेट किया कि फिर से उसी दुकान में जाऊँगा, सेंट्रल मार्केट में, हाँ, जो सोने की शॉप है। तो वहाँ वो जाता है, अपने बाल वगैरह बढ़ाता है, दाढ़ी बढ़ाता है, कपड़े चेंज करता है, फिर उसी शॉप में जाता है और फिर वो कहता है कि जाकर फिर कहते हैं कि ये जो टेलीविज़न है ये कितने में सेल कर रहे हो आप? वो कहते हैं, फिर से कहते हैं, मूर्खों को आप नहीं बेचते। अभी गर्म हो रहा था, कैसे ये व्यक्ति को इतना कैसे डिटेल में पता कि मैं मूर्ख हूँ। फिर घर आता है, सोचता है क्या करूँ, और थोड़े दिन बिताता है और फिर चला जाता है। जब वो जाता है वापस तो वहाँ जाकर फिर से पूछता है, वो कहता है कि बताओ, हाँ, ये टेलीविजन कितने का है, कितने में सेल कर रहे हो? फिर से ओनर कहता है हम मूर्खों को ये टेलीविजन सेल नहीं करते। अभी तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया था, उसने सोचा अभी इसको पिटाई करता हूँ। उसने बोला कि आप बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं मूर्ख हूँ? तो कहते हैं कि ये टेलीविजन नहीं है, माइक्रोवेव है। तो वैसी स्थिति है, हमें भी यदि सही रूप से ज्ञान नहीं है कि वास्तव में योगा क्या है। हम सोचते योगा का मतलब है एक्सरसाइज जिसके द्वारा बॉडी को अलग सही ढंग से शेप मिले, तो ये योगा प्रैक्टिस नहीं है, ये योग आदि नहीं है। या तो हम सोचते योगा का मतलब क्या है कि हमारा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाए और इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं वो बढ़े, हाँ, अच्छी हेल्थ हो ताकि उसके द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति अच्छे से कर सकते हैं। या तो योगा का मतलब हम सोचते हैं, हाँ, जैसे ये प्राणायाम जब आता है तो मैं उसको नया नाम दिया है, प्रेशर कुकर। आप प्राणायाम सोचते हो ना, या कपाल भाती, आवाज आता है कि नहीं प्रेशर कुकर के भाती? तो वही है। तो योगा का मतलब ये नहीं कि अपने लाइफ स्पैन या अपनी आयु को बढ़ाना, हाँ, जितने हम सांस अपने बर्बाद करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं तो उतनी हमारी आयु कम हो जाती है। योगीज क्या करते हैं, अपने सांस को रोकते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। हाँ, इसलिए जो प्राणायाम आदि है ये उसी की एक प्रकार की विधि है। तो योगा का मतलब केवल यही नहीं कि हम अपने जीवन, हाँ, को बढ़ाएं, या फिर योगा का मतलब ये नहीं, हाँ, जैसे योगा करते लोग महान ऐसे साधु दादी जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, मिस्टिक पावर, जिसके द्वारा उनके पास ऐसी सिद्धियां आती हैं कि वो यदि, हाँ, क्लास में भी आ जाए तो वो चेयर की आवश्यकता नहीं होगी, वो कहाँ बैठेंगे, एयर में बैठेंगे, हवा में बैठेंगे और क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो योगा का अर्थ ये नहीं है कि जिसके द्वारा हम, हाँ, ये जो सिद्धियां आदि प्राप्त करें, या फिर योगा का मतलब यह नहीं कि सारी चीजों का परित्याग करके वैरागी हो जाएं। हाँ, तो वास्तविक योगा क्या है जिसका डेफिनेशन भगवान हमें प्रदान करते हैं, हाँ, कि योग क्या है। योग का मतलब है, योग जो शब्द आता है युज से, संस्कृत जो शब्द है, और युज का मतलब है जुड़ना। क्या करना? जुड़ना या जोड़ना। हाँ, जैसे आप जानते हैं फेविकल का जो एड आता है, दो एलिफेंट्स होते हैं, है ना, जब फेविकल के द्वारा चिपकाया जाता है तो दो हाथी भी उसे खींचे तो भी नहीं तोड़ सकते। तो योगा का मतलब है जुड़ना, ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उसी को वास्तव में शास्त्र में योग कहा गया है। तो ऐसे कई प्रकार के योग हो सकते हैं। तो जो हम अपने कार्यों के द्वारा जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो वह कर्म योग है, या फिर हम ज्ञान के द्वारा जब भगवान से कनेक्ट होते हैं वो ज्ञान योग है, और जब हम ध्यान के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो वो ध्यान योगा कहा जाता है, और जब हम प्रेम के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो उसे भक्ति योगा कहा जाता है। कौन सा योगा? किसके द्वारा कनेक्ट होने से? प्रेम के द्वारा। तो इस प्रकार से अलग अलग ये जो योगा है जो हमारे लिए कलियुगा में बहुत ही क्या है, कठिन है। तो हमारे लिए कौन सा है प्रैक्टिकल योगा? कोई व्यक्ति सहे कहे कि नहीं, कर्म योगा में कर सकता हूं। जनरली लोग कहते हैं कि भगवत गीता का सार यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः, कि कर्म करते जाओ, बस कर्म करते जाओ। गधा भी कर्म करता है, करता है कि नहीं करता? लेकिन गधे को यह पता नहीं कि क्यों करना है और कैसे करना है। अर्जुन को भी भगवान ने प्रोत्साहित किया कि अर्जुन युद्ध करो, लेकिन गधे के बात ही नहीं, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्धच, तुम अपनी ड्यूटीज करो, लेकिन कैसे अर्जुन? मेरा स्मरण करते हुए, ये सीक्रेट है। तो उसी प्रकार से जब ध्यान योगा किया, हम कर्म योगा की बात भी करें तो कर्म योगा एक प्रकार से हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आजकल का कोई भी कर्म को आप ले लो तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का दोष छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा कर्म शुद्ध, कोई भी कंपनी में आप नौकरी करोगे तो बिना भ्रष्टाचार आदि के कोई कार्य असंभव है। तो कैसे हम प्योर कर्म योगा करेंगे? तो इसलिए, और ये भी हमें पता नहीं है कर्म योग करने के लिए कि मैं हूं कौन, मैं क्या ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। हाँ, कर्मयोगा तभी पता चलेगा जब पता चले कि मैं कौन हूं। हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह कार्य करो, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की भांति कार्य करो। हमारी स्थिति क्या है, थोड़ा सा हमें पढ़ने में रुचि आ जाती है 10 मिनट तो हमें लगता है कि मैं ना ब्राह्मण हो गया हूँ। अभी कौन हूँ मैं? ब्राह्मण। घर के अंदर आप पढ़ रहे हो तो ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, जो इन कार्यों में लगा रहता है। तो थोड़ा किसी का पढ़ने में रुचि आ गया तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ब्राह्मण हो गया, और घर के बाहर यदि कुछ थोड़ी फाइट हो रही है तो बाहर आता है तुरंत कौन सा भाव आ जाता है उसमें? क्षत्रिय। और फिर घर में आके टेलीविजन देखता है तो देखता है कि वहां कुछ इन्वेस्ट करने की बातें हो रही हैं, तो तुरंत वैश्य प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और वैसे ही दिन रात काम कर ही रहा है गधे के भांति, शूद्रा। तो इस प्रकार से कर्मयोगा हमारे लिए असंभव है, कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं कौन से वर्ण में हूँ और कौन से आश्रम में हूँ। तो फिर कैसे कनेक्ट हो सकता है व्यक्ति? और दूसरा योगा क्या है? ज्ञान योगा। ज्ञान, अभी ज्ञान की बातें करेंगे तो आपको पता होगा कितने वेद हैं? 4। कितने उपनिषद हैं? 108। कितने इतिहास हैं? रामायण महाभारत। हजारों संहिताएं हैं, हजारों सूत्रास हैं, उसके ऊपर हजारों भाष्य आदि हैं, और उनको समझने के लिए, इतने सारे ज्ञान की चीजों को समझने के लिए हमें लैंग्वेज भी आनी होगी। कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। कितना कठिन है संस्कृत। संस्कृत समझने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए आपको 12 साल चाहिए, दिन के 24 घंटे आप लगते हो संस्कृत प्रॉपरली अध्ययन करने के लिए, तो आपके पास 12 साल चाहिए। और सीख भी जाओगे तो संस्कृत के शब्दों में इतना भंडार है कि आप उसको सही रूप से समझ नहीं सकते। इवन हम अपनी भाषा को नहीं जानते सही रूप से, हिंदी बोलते हिंदी भी नहीं आती हमें, ना ठीक से इंग्लिश आती है, ना अपनी पर्सनल जो मदर टंग है वो भी हमें आती नहीं है। अब सोचिए हिंदी, हिंदी के ही लैंग्वेज के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं शब्दों के। हाँ, जैसे एक सेंटेंस है कि माधुरी शर्मा गई, क्या सेंटेंस है, तो इसके भी कई मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग क्या हो सकता है, माधुरी शर्मा गई। दूसरा है कि माधुरी शर्मा, तो ऐसे संस्कृत के कई सारे उदाहरण हैं। हाँ, हमारे पास समय नहीं है, तो संस्कृत में भी इतना कुछ है कि उनको सीखने के बाद भी आप सही कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए कलियुगा के जीवों के पास कोई भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। तो जो तीसरा योगा है वो है ध्यान योगा। अभी ध्यान योगा तो बहुत कठिन है, ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार आदि समाधि, तो ये बहुत बड़ा सिक्वेंस है। ध्यान लगाने हम आंखें बंद करें, हाँ, तो सबसे पहले अभी अभी आप सबके लिए एक एक्सरसाइज है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, अब आप वही ऐसे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, सीधा बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए एक सेकंड, दो तीन सेकंड के लिए। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा उसके बाद, और अभी आप आंखें खोल सकते हैं। तो आपको पूछा जाए कि क्या चीज, जैसे आपने आंखें बंद की, क्या चीज आपको स्मरण हुआ है? सबसे पहले कोई शेयर करना चाहेगा? हम यदि आंखें बंद भी कर लेते, ध्यान करना कलियुगा में कितना कठिन है। ध्यान भटकाने का यंत्र हम सदैव साथ रखते हैं, रखते कि नहीं, बल्कि असंभव है। कलियुगा के जीवा इस प्रकार के ध्यान आदि में मग्न हो सके। बल्कि शास्त्र कहते कि भगवान ने गीता में जब ध्यान योग का वर्णन किया, अर्जुन जैसा क्वालिफाइड व्यक्ति डर गया। भगवान को कहते हैं, हे भगवान, कुछ प्रैक्टिकल बातें करो ना, कि ये ध्यान लगाना, बिल्कुल सीधा बैठना, रीढ़ पीठ की हड्डी सीधा हो, गर्दन सीधा हो, और आप बिल्कुल नाक के सामने देख रहे हो। अभी हमारे बैठने के लिए कितना असंभव है, चेयर में बैठते तो भी हम आधे मरे हुए हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे बैठना हमारे लिए कलियुगा के जीवन के लिए असंभव है। तो अर्जुन भगवान को कहते, कुछ प्रैक्टिकल बातें बताओ जिसके द्वारा मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। बल्कि अर्जुन कितना क्वालिफाइड व्यक्ति था, वो कह रहा है कि कृष्णा, ये ध्यान योग मेरे लिए असंभव है। तो हमारे जैसे जो कलियुगा के जीव हैं, उनके लिए असंभव है। ध्यान योग के लिए आपको पूरा ब्रह्मचारी रहना होगा परमानेंटली, उसके लिए आपको अरण्य में जाना होगा, जंगल में, और बिना किसी भय के वहां ध्यान लगाना होगा। शेर भी आपके पास आ जाए तो भी आपको अपने ध्यान में मग्न रहना होगा। तो ऐसा हमारे लिए असंभव है। हमें एक मच्छर थोड़ा सा आके, मच्छर भगवान ने ऐसा मशीन बनाया है, वो आने से पहले अनाउंसमेंट करता है कि मैं आ गया हूँ। क्या कहता है, मैं आ गया हूँ, जो करना है वो करो, चैलेंज देता है। उसके लिए हम इतने परेशान हैं, तो हम क्या ध्यान कर सकते हैं? तो ऐसे जो ध्यान की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए वास्तव में असंभव है। हम ध्यान भी बैठेंगे ध्यान करने के लिए, या तो ऑफिस याद आएगा, या तो पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, या पति याद आएगा, या घर के काम याद आएंगे, है ना, लोन याद आएगा, कितनी सारी चीज़ें याद आएगी। तो ध्यान हमारे लिए असंभव है। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ें जो भगवान अर्जुन पूछते हैं, हाँ, तो भगवान कहते हैं, हाँ, जैसे आपको पता करना होगा कि विंडोज़ कौन सा परफेक्ट है, तो जिसने बनाया उसको पूछना होगा। बिल गेट को हमें क्या करना होगा, पूछना होगा विस्टा सही है या एक्सपी या 2000, कौन सा बेटर है, बेस्ट है, हाँ, तो वो बता सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने ये सारे योगा दिए हैं, तो उनके द्वारा ही हमें जाना जा सकता है कि कौन सा जो योग है वो परफेक्ट है। तो भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये अर्जुन, मेरा ये मत है कि जो व्यक्ति सदैव मेरे इस भक्ति योगा में नियुक्त होता है, मेरा स्मरण आदि करता है, वो मेरे लिए पूर्णतया अनुभव कर सकता है, या मुझसे वो कनेक्टेड है। तो योगा का मतलब क्या है, जुड़ना। तो भगवान को हम बेस्ट रूप से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं, वो योगा, वो है भक्ति योग। और बाकी सारे योग क्या है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। अलग अलग सीढ़ी के अलग अलग धरातल हैं, हाँ, लेकिन जो भक्ति योग हैं वो एक लिफ्ट के भांति हैं जिससे हम भगवान के साथ हाँ सीधा जोड़ सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में कई सारे अध्याय हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवद गीता को बिल्कुल बीच में रखा, बाकी सारे योगों का वर्णन एक एक अध्याय में किया, लेकिन जब भक्ति योगा का बात आई तो भगवान ने सीधा 6 अध्यायों में वर्णन किया। भगवद गीता के 18 अध्याय में शुरुआत में भगवान 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, और भक्ति योगा बीच में है, जैसे सैंडविच है, सैंडविच नजर आ रहा है, भूख भी लगी होगी आपको, हाँ, तो सैंडविच के बीच में ऊपर एक ब्रेड और नीचे, और जो मेन थिंग है उसको बीच में रखा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी भगवद गीता में जो सबसे प्रिय और उनसे जोड़ने की या संबंध बनाने की जो बात है, भक्ति योग है, उसको भगवान बीच में रखते हैं और उसे हाईलाइट करते हैं या स्वीकारते हैं। तो इसलिए भगवान ये जो भक्ति योग है उसका वर्णन करते हैं। तो भक्ति योग हमारे अंदर नेचुरल है, जैसे हमें कुछ क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। उस प्रैक्टिस के द्वारा ही हम भक्ति योगा को डेवलप कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि कैसे संभव है, हम यदि पारिवारिक जीवन में हैं, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में हैं, तो हमें हम कैसे उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक भक्ति योगा को अप्लाई कर सकते हैं। व्यक्ति डरते हैं, तो पहली चीज़ है, हाँ, जिनको ये वर्णन किया भगवान ने, भगवद गीता सुनाई अर्जुन को, तो अर्जुन कौन थे अर्जुन, ये गृहस्थ थे। भगवान ने चूज नहीं किया हिमालयाज में जाकर कोई ब्रह्मचारी है, कोई महान मुनि ऋषि कोई बैठा है, सारा छोड़ छाड़ कर जंगल में सर के ऊपर खड़ा और जाके कह रहे उठो उठो तुम्हें भगवद गीता सुनाना चाहता हूँ, ऐसे तो नहीं किया। भगवान ने किसे पकड़ा, जो सबसे अधिक बिजी व्यक्ति है, और ऐसे नहीं कि अर्जुन के पास दो पत्नियां, दो नहीं 3 पत्नियां थी, तो एक पत्नी वाले के लिए भी भगवद गीता हो सकता है, नहीं हो सकता, संभव है। तो भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति को ये भगवद गीता का ज्ञान देते हैं और भक्ति योगा की शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वो एक आइडियल गृहस्थ थे जिनके पास अपने सारे ड्यूटीज थे, इतना बड़ा राज्य उनके पास था और इतना बड़ा अफेयर को संभालते हुए भी वो भक्ति योगा का पालन कर रहे थे। ऐसे नहीं कि अर्जुन के पास कुछ काम धंधा नहीं था, खाली बैठे थे निठल्ले और भगवान के पास गए, भगवान अभी ना आजकल खाली हो, चलो जरा गीता सुनाओ, ऐसे हुआ था नहीं। अर्जुन कितना बिजी था, और जनरली व्यक्ति कहता है कि हमारे पास और सही में टाइम नहीं है, हम कभी भी मरने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, टाइम किसके पास है, हम कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है और सही में टाइम नहीं है, लेकिन अर्जुन इतना बिजी था, अभी अभी ऑफिस के लिए निकला था रथ लेकर, गाड़ी लेकर, है ना, भगवान ने रोक दिया, अरे रुको अभी भगवद गीता सुनाता हूँ, अर्जुन ने कहा ठीक है टाइम निकालता हूँ। क्या किया अर्जुन ने, टाइम निकाला और 45 मिनट्स के लिए भगवान से भगवद गीता का उपदेश सुना। हाँ, तो जब हम टाइम देते हैं इस कार्य के लिए तो भगवान हमारा टाइम हम बचाते हैं या सेव करते हैं। तो लेकिन जनरली सबसे बड़ी बीमारी आजकल है इस मॉडर्न समाज में कि व्यक्ति के पास समय नहीं है, कहते हैं ना कि खाने के लिए समय नहीं, फिर जी क्यों रहा है, नहीं खाने के लिए समय नहीं तो सुखी कैसे होगा, फिर व्यक्ति को थोड़ा रुक के सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, इन सब का उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाहता हूँ जीवन के अंत में। तो और व्यक्ति कहता है कि ये तो क्या है, कौन सा प्रोग्राम है यहाँ, रिटायरमेंट प्रोग्राम, हाँ हम रेल भवन से रिटायर्ड हो जाएंगे तो करेंगे। तो वास्तव में हम सोचते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है, हाँ कहते अभी तो गाला टाइम चल रहा है मालाबाद में, नहीं अभी इस टाइम को मुझे यूटिलाइज करने दो। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे अभी हाथ पांव सब कुछ चल रहे हैं, अभी तो मुझे भौतिक कार्यों को करने दो, एंजॉय करने दो लाइफ को, किसी के घर में कोई एक बच्चा यदि भगवान के टेंपल जाने लगता है, जप आदि करने लगता है, या फिर भगवद गीता का अध्ययन करने लगता है, तो माता पिता कहते हैं, अरे बच्चा मंदिर जा रहा है, अरे बाहर में जाना, हाँ इधर उधर चले जाओ, मंदिर मत जाओ, अरे माला भी लेके बैठे हो, हम तो तुम्हारे लिए वर माला सोच रहे थे और तुम क्या लेके घूम रहे हो, माला लेके घूम रहे हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि ये सारे चीजें जब बुढ़ापा आएगा, जब मुझे सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, चलने की शक्ति नहीं होगी, तब मैं मंदिर जाऊंगा और देखूंगा, सुनूंगा, पढ़ूंगा, अब वृंदावन जाऊंगा, वो असंभव है। तो वास्तव में ये रिटायर प्रोग्राम नहीं है, भगवद गीता हमें डायनामिक लाइफ जीने के लिए सिखाती है। हाँ, तो भगवद गीता शुरुआत से ही है, इसलिए प्रहलाद ने कहा कौमारम आचरत प्राज्ञ, भक्ति योग शुरुआत से सीख सकते हैं, अब माँ के गर्भ से लेकर ओम से लेकर टोम तक। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी माता कयाधु के गर्भ में थे, तो नारद मुनि से भक्ति सीखा उन्होंने, बाहर आके तो भक्त बन गए, और जब ध्रुव 5 साल के थे तब अपने नारद से उन्होंने सीखा, परीक्षित महाराज युवा अवस्था में भक्त बने, अजामिल मरने वाले थे तब भक्ति शुरू की, और गजेंद्र हाथी मरने के बाद जब पशु शरीर में गए तभी भक्ति शुरू उन्होंने की। तो भगवत भक्ति या भक्ति योगा करने के लिए कोई भी शुरुआत हो सकती है, टाइम है अभी हम सबके पास, जिसके द्वारा हम भक्ति योगा को सीख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हमें एग्जैक्टली करना क्या होगा यदि कोई व्यक्ति पूछता है, हाँ तो शास्त्र कहते हैं सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैं वास्तव में, जिस प्रकार से कोई एक बीमार व्यक्ति होता है, तो बीमार व्यक्ति सबसे पहले ये समझे कि मैं बीमार हूँ, दूसरी चीज वो जाने कि मुझे सही हॉस्पिटल को अप्रोच करना होगा, तीसरी चीज उसको जाननी होगी कि सही डॉक्टर, राइट डॉक्टर की चूज करना होगा मुझे, और डॉक्टर जो कहें कुछ चीजें मुझे अपने जीवन में अवॉइड करनी होगी, और जो सही जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको मुझे स्वीकारना होगा, है कि नहीं। यदि वो क्या करना चाहता है, ठीक होना चाहता है, तो उसी प्रकार से हमारी सिचुएशन है, हमारी स्थिति है इस जगत में भी। हाँ, तो पहली चीज हमने सुना है कि हमारी बीमारी क्या है, 4 प्रकार के प्रॉब्लम और 3 प्रकार के दुख, कौन कौन से हैं आपने सुना है पिछले सेशंस में, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी और आध्यात्मिक दुख, मन और शरीर के दुख जो है, आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, और है आदि दैविक जो नेचुरल जो चीजें विपदाएं हैं जिनको हम झेलते हैं। हाँ, तो हमें पता चला है इस सेशन में कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी भी पता चली, तो हमें राइट जो हॉस्पिटल है उसको अप्रोच करना होगा। हाँ, जैसे आप बीमारी पता चलती है तो आप सही हॉस्पिटल ढूंढते हो, तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल क्या है, मंदिर है। तो हॉस्पिटल वास्तव में जिसकी तुलना एक मंदिर से की गई है, तो मंदिर कोई सर्वसाधारण स्थान नहीं है। जनरली भारत में क्या है, मंदिर ऐसे स्थान है कि जहाँ व्यक्ति जाए थोड़ा सा घंटी बजाता है और बस कुंडी में 1 रुपया डाल के वापस आता है, वहाँ का जो पंडित जी कुछ प्रसाद दे देता है, एक पेड़ा या लड्डू आदि, और एक मेनू कार्ड छोड़ के आ जाता है। मेनू कार्ड पता है ना, भगवान ये लिस्ट है, अगले हफ्ते आऊँगा तब तक ये ऑर्डर मैं करके जा रहा हूँ, वो कंप्लीट करके रखना। तो ये हमारी सिचुएशन है, हम इस बात ही मंदिर जाते हैं। तो मंदिर केवल इस चीज के लिए नहीं है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है मंदिर में तो पत्थर पूजे जाते हैं, क्या पूजे जाते हैं, नहीं, भगवान के जो विग्रह हैं वो पत्थर नहीं है। आप सर्वसाधारण रूप से देखो, हाँ, जो नोट्स है जिसका हम इस्तेमाल करते, सोचो 1000 का नोट है, वो एक पेपर है, और उसके साथ हम दूसरा पेपर रखे तो दोनों भी पेपर है, तो क्या वैल्यू है, क्या अंतर क्या है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक के द्वारा क्या है, वो रिकग्नाइज्ड है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो विग्रह हैं, ये मूर्ति नहीं है, वो केवल मार्बल या मूर्ति आदि नहीं है, पत्थर नहीं है, जब तक भगवान के जो महान भक्त उसको भगवान को इनवाइट करते हैं आध्यात्मिक जगत से और भगवान सेवा लेने के लिए उस रूप को स्वीकार करते हैं और सेवाओं को स्वीकार करते हैं, तो मूर्ति नहीं कहलाती, वो क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है और सेवा को वो स्वीकारते हैं। तो इसलिए जो मंदिर है वो कोई सर्वसाधारण चीज नहीं है, बल्कि वो वास्तव में भगवान का पूजनीय स्थान है। तो केवल मंदिर ही इनफ नहीं है, बल्कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मंदिर अपने घर को भी क्या बनाए, वो मंदिर बनाए, घर को भी भगवान का स्थान प्रदान करे, भगवान को अपने घर में स्थान करे। तो मंदिर कौन सा स्थान है, किसे मंदिर कहते हैं, जिस स्थान में भगवान केंद्र बिंदु है उस स्थान को मंदिर कहा जाता है। तो जिस घर में भगवान केंद्र बिंदु हो जाएंगे उस स्थान को मंदिर कहा जाता है। जनरली लोग मंदिर जाते हैं और वहां जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, आप सब जाते हैं मंदिर परिक्रमा करते, प्रदक्षिणा क्यों करते हैं बताइए, क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं वो पूछते रहते, प्रभु जी चार करनी है कि दो करनी है, एक करनी है, कुछ लोग तो खुद की करते रहते हैं, खुद ही अकेले घूमते रहते हैं एक जगह, वो सोचते कि मैं ही भगवान हूं, मुझे किसी और की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा हम इसलिए करते हैं कि ये अनुभव करने के लिए कि कृष्णा या भगवान हमारे लाइफ के क्या है, केंद्र है। आप किसी चीज को बीच में रखते हो तो घूमते हो उसकी ओर, तो वो केंद्र बन जाता है ना, वो वस्तु है। तो उसी प्रकार से भगवान वास्तव में हमारे जीवन के केंद्र है, इसलिए हम एक प्रकार से परिक्रमा करते हैं और उससे अनुभव करते हैं। तो पहली चीज यही है कि राइट हॉस्पिटल को हमें अप्रोच करना होगा। और आजकल के सभ्यता में भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, क्या केंद्र बिंदु बनते जा रहा है, सारे लोग एक साथ एक समय में घर में आपस में मिलते हैं, वो समय कौन सा होता है, टेलीविजन देख, खाते एक साथ नहीं है, बातें करने का समय नहीं है, लेकिन मिलते आपस में कब, टेलीविजन के सामने और चुप्पी लगा के बैठते हैं। तो वास्तव में शास्त्र कहते हैं या डिवोटीज कहते हैं कि भारत का जो कल्चर है उसकी हानि ना मुगलों ने की ना ब्रिटिशर्स ने की। सबसे ज्यादा हानि किसने की है 20 सालों में, MTV एंड सो मेनी टीवीज, इतना कल्चर गंदा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना प्रदूषण हो गया है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं, यदि हम भगवान को क्या करें, सेंटर बनाएं। तो जो तीसरी चीज है कि कैसे राइट, हमें तो हॉस्पिटल हमने अप्रोच किया और राइट डॉक्टर ढूंढना होगा। तो राइट डॉक्टर कौन है, भगवान नहीं है, राइट डॉक्टर कौन है, एक गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि जनरली जो टेंपल्स होते हैं उनमें कुछ और चीजें नहीं है, भारत में हजारों टेंपल्स हैं, लेकिन वहां ना श्रवण आदि है, ना जानने के भगवान कौन है, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों मुझे समझना चाहिए, उन सब का ज्ञान की कमी है। तो डॉक्टर का मतलब ही है राइट डॉक्टर को अप्रोच करें, और वो राइट डॉक्टर गुरु है, और गुरु किसमें होने चाहिए, परंपरा में होने चाहिए, किसमें, क्योंकि भगवान ने गीता में ही बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि अर्जुन ये जो ज्ञान परंपरा से मैं दे रहा हूं। तो जो आध्यात्मिक गुरु है उसका गुरु ऐसी है जो परंपरा भगवान तक पहुंचनी चाहिए, तब वास्तव में वो ज्ञान परम पवित्र है और योग्य है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो ऐसी भगवान ने ऑथराइज परंपराएं दी हैं, और वो परंपरा कितनी है, चार हैं। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा को, जिसके द्वारा परंपरा शुरू हुई, और ये जो इस्कॉन है इस ब्रह्म संप्रदाय में आता है। और दूसरा ज्ञान भगवान ने लक्ष्मी को दिया, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मी ने रामानुजाचार्य को दिया। और तीसरा भगवान ने कृष्ण ने ज्ञान शिवजी को दिया, महादेव उन्होंने आगे विष्णु स्वामी आदि को दिया। और जो चौथी जो परंपरा है, भगवान ने चार कुमारों को ये ज्ञान दिया, और उन्होंने ये ज्ञान आगे निम्बारकाचार्य को दिया। और ये ऐसी जो चार परंपरा है जो अवेलेबल है, यदि हम इन परंपरा का आधार लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में भगवान से हम पूर्ण रूपेण कनेक्ट हो जाते हैं। और जो चौथी चीज है कि हमें ये जो डॉक्टर को हम चूज करते हैं जो परंपरा से हैं, अधिकृत हैं, तो डॉक्टर यदि हमें कहता है कुछ चीज़ों का पालन करने के लिए, या डॉक्टर जो हमें चीज़ें सिखाता है, हाँ, तो उसको हमें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। डॉक्टर हमें कुछ अवॉइड करने के लिए कहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेटर है, तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए यदि हम ठीक होना चाहते हैं। तो कल भी आपने इस पर चर्चा की होगी, हाँ, तो चार चीज़ें हैं जो अवॉइड करने के लिए शास्त्र कहते हैं, जो धर्म के चार स्तंभ हैं। और पहला क्या है? मांसाहार। क्योंकि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं मांसाहार करने से व्यक्ति के अंदर की दया की भावना खत्म हो जाती है, वो क्रूर हो जाता है, हाँ, मर्सी इज लॉस्ट। और दूसरी चीज क्या है? जुवा। जुवा अवॉइड करना है, जिसके द्वारा हमारे अंदर जो सत्यता है, ट्रूथफुलनेस, वो खत्म हो जाता है। और जो तीसरी चीज है क्या है? नशा। नशा के द्वारा हमारे अंदर कौन सा गुण खत्म हो जाता है? तपस्या की भावना, ऑस्टेरिटी। हाँ, तपस्या नहीं कर सकते। हाँ, जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में लिप्त है, वो कभी भी अपने जीवन में तपस्या नहीं कर सकता। और जो चौथी चीज है, अनैतिक संबंध, जिसके द्वारा हम जो शौच है, क्लीनलीनेस, हाँ, उसको खो देते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्ति योगा में वास्तव में यदि हम सही होना चाहते हैं, तो पहले हम जानते बीमारी क्या है, राइट हॉस्पिटल एज ए टेम्पल अप्रोच करते हैं, और तीसरी चीज क्या है? डॉक्टर, जो परंपरा आदि से होना चाहिए। और चौथी चीज है कि हमें सर्टन थिंग्स जो अवॉइड करनी चाहिए। और पांचवी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें स्वीकारना चाहिए। तो पांचवी चीज क्या है? कि जो ट्रीटमेंट हमें बताई गई है, उसको हमें अप्लाई करना होगा, लागू करना होगा। तो वो ट्रीटमेंट में चार चीजें हैं, ए, बी, सी और डी। तो पहली चीज क्या है? एसोसिएशन। पहली चीज क्या है? संग है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम भक्ति योगा सीखना चाहते हैं, भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें सही संग हमें चूज करना होगा। जैसे ये दो, ये क्या है? दो तोते हैं। क्या है, क्या नजर आ रहे हैं आपको? दो तोते हैं। तो एक बार एक ऋषि जंगल से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जिनके पास ये दो तोते थे, और जो एक ही फैमिली से, एक ही माता पिता से उन्होंने जन्म लिया था। और लेकिन वो व्यक्ति था जो ये बेच रहा था इन तोतों को, दो अलग अलग लोग उस व्यक्ति को अप्रोच करते खरीदने के लिए। एक शिकारी आता है, कहते है मुझे ये तोता चाहिए, तो वो उनसे खरीद लेता है, वो लेकर चला जाता है एक तोते को। और दूसरा व्यक्ति आता है, राजा, जंगल में घूमते घूमते, और उसको कहता है कि ये तोता तो बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए, तो अपने साथ वो दूसरे तोते को ले जाता है खरीद कर। और ये दो तोते अलग अलग स्थानों में रहने लगते हैं, एक तोता शिकारी के यहाँ रहने लगता है, और दूसरा तोता राजा के यहाँ रहने लगता है। तो ये जो मुनि, जो ऋषि, जिस ऋषि ने ये दोनों चीजें देखे थे, तो उसने सोचा मैं दोनों तोतों के घरों में विजिट करता हूँ कि अभी वो क्या कर रहे हैं, उनका आचरण आदि कैसे हैं। तो ये व्यक्ति पहले उस तोते के वहां गया जहां शिकारी के वहां वो तोता था। जैसे वो शिकारी के घर में घुसी रहा था, तो तोता गालियां बकने लगा। क्या बकने लगा? अनाप शनाप चीजें बोलने लगा। वो साधु ऋषि भाग के आ गए, ये क्या हो गया, ये तोता इतनी गालियां और गंदी बातें बोलते जा रहा है। वो साधु महाशय वहां से भाग गए। वो भागते हुए राजा के घर गए, राजा के महल में। तो वहां जब गए, तो वहां जाते ही जो दूसरा तोता वहां था राजा के पास, वो संस्कृत में बोलने लगा कि आइए आइए, आपका स्वागत है। ये मुनि तो बड़े प्रसन्न हो गए, अभी तो एक से गालियां खा के आ रहा हो, और उसी का दूसरा भाई क्या कर रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है, और मुझे आसन पानी आदि के लिए पूछ रहा है। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या चीज है, तुम दोनों एक ही माता पिता से जन्म लिए हो लेकिन दोनों में इतनी बड़ी विभिन्नता है, इतना बड़ा अंतर है। हाँ, तो उसने कहा कि इसमें ना उसकी उसका दोष है ना मेरा गुण है। वो कहने लगे, वो कहते एक श्लोक में, गवाशनेन च वाक्यम श्रुणोति अहम च राजम वचनम मुनीनाम, कि हे ऋषि, वो जो मेरा भाई दूसरा तोता है वो सदैव शिकारी की बातें सुनता है और शिकारी यही बोलते रहता है मारो काटो और गंदी गंदी बातें बोलता है, तो उसके संग का प्रभाव उसे हुआ। और मेरे मैं तो सदैव राजा और राजा के पास ऋषि मुनि आते हैं, वो मधुर मधुर और सुंदर बातें बोलते हैं, उसी को मैं सुनता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ना मेरे मुझ में गुण है ना उसमें दोष, ये तो संग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? संग का प्रभाव है। तो उसी प्रकार से हमें अपने संग को चूज करना होगा, क्योंकि संग के द्वारा ही हम उन्नति करते हैं। और तीसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ है बुक्स, शास्त्रों को हम पढ़ें, हाँ, जिसमें शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो है भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अलग अलग युगों में अलग अलग विधि है भगवान को प्राप्त करने की। कृतेय ध्यायतो विष्णु, सत्ययुगा में ध्यान की विधि थी, और त्रेता युगा में यज्ञ करने की विधि थी, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बना के उपासना अर्चना करने की विधि थी। लेकिन जैसे कलयुग आता है तो कलयुगा में ये तीनों विधियाँ फेल हैं। तो कलयुगा में एक ही विधि है, कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुगा में एक ही गुण है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना। कोई कह सकता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आप लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में जब ये कलयुग शुरू हुआ, नारद ने जब देखा कि कलयुगा की बहुत बुरी स्थिति है, कलयुगा के लोगों के पास मंद बुद्धि है, कम आयु है, वो कैसे इस भौतिक जगत से पार हो सकते हैं, दुख में जीवन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो नारद ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं प्रोसेस क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते इति षोडशकम नामनाम कली कलमश नाशनम ना तो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलियुगा में तो ये जो 16 अक्षरों का नाम है इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये शास्त्र कली संतरण उपनिषद में ये वर्णन आता है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हमें उच्चारण करने से हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। इसलिए बृहन नारद ये पुराण भी कहता है हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवलम। हाँ, ये तीन बार बोला है क्योंकि बाकी तीन योग आवश्यक नहीं है, कर्म ज्ञान और ध्यान। हाँ, कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता, कलयुगा में इसके अलावा कोई गति नहीं है। ये केवल इतना ही नहीं कि बल्कि बाकी स्क्रिप्चर्स भी वही कह रहे हैं, बाइबल में भी वर्णन आता है जो कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए उच्च स्वर में। इवन सिखिज्म में भी कहा गया है, गुरु नानक जी कहते हैं कि व्यक्ति को ये अमृतमय भगवान का जो नाम है उसका वर्णन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए सुबह शाम। इवन कुरान भी वर्णन करता है कि अल्लाह के 99 नाम है जिनका उनके जो फॉलोअर्स है उनको उच्चारण करना चाहिए। बुद्धिज्म भी भगवान के नामों का वर्णन करने के लिए सबको प्रोत्साहित करता है। तो सनातन धर्म भी हमें वही शिक्षा भगवान प्रदान करते हैं, और वो क्या मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र का मतलब ही है कि मन, मन का मतलब है माइंड, तर का मतलब है जो डिलीवर करता है, तारता है, तो उसे मंत्र कहा जाता है। तो ऐसे मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण रेगुलर व्यक्ति को करना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित कर सकता है, और ऐसा संबंध स्थापित करके व्यक्ति दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो भगवान के नाम का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो हम माला के ऊपर जप करने से और धीमे स्वर से करें और स्वयं सुने, और दूसरा है संकीर्तन। सारे हजारों लोग एकत्र होकर मिलकर जब इंस्ट्रूमेंट्स आदि के साथ इस भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में कई सारे रेफरेंस दिए गए हैं। और कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान का नाम लेंगे तो होगा क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जो हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली है अमेरिका में जहाँ सारे लोग अपने घर में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं संध्या के समय में, तो हम सारे सर्वप्रथम सारे जो पाप आदि हैं और पापमय जो आदतें हैं जो हमें बहुत तंग करती हैं, सताती हैं, जिसके लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कई चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर होने लगती हैं और हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। बहुत सारी चिंताएं और स्ट्रेस हमेशा हमारे ऊपर दबाव है, चिंता है, स्ट्रेस है। हाँ, यदि हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं रोज तो स्वाभाविक रूप से आप अनुभव करेंगे कि आप उससे मुक्त हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, हमारा ये जो पागल मन है जो सदैव चंचल रहता है और हमें बहुत तंग करता है, हम मानसिक शांति अनुभव कर सकते हैं। मन को शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है, हजारों रुपए खर्च करके दूर दूर घूमने जाता है, लेकिन वापस आता है वही अशांतिमय जीवन। हाँ, तो हम जड़ से यदि उखाड़ना है अशांति को तो भगवान के नामों का जब हम उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो मन है वो शांति अनुभव करता है और वास्तविक जो सुख है वो हम महसूस करते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि भगवान के साथ हम कनेक्ट होकर भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं। ऐसे नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं, हजारों भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहाँ श्रील प्रभुपाद के द्वारा यह हरे कृष्ण महामंत्र और यह आंदोलन नहीं पहुँचा है। इवन लंदन में जो सबसे बड़े बीटल सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन, वो भी हरि नाम उच्चारण करते थे और वो कहते थे कि बेस्ट प्रोसेस है भगवान नाम उच्चारण करने का। जो फोर्ड कंपनी के ओनर हैं अल्बर्ट फोर्ड, उनका आध्यात्मिक नाम अमरीश दास है, उनकी पत्नी है, उनके घर में सुंदर मंदिर है। जो फोर्ड ओनर, फोर्ड कार के जो ओनर है फैक्ट्री के, वो भी हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, रोज भगवान के नाम का उच्चारण करते, गीता भागवत की चर्चा करते हैं और अपना बिजनेस आदि सारी चीज़ें संभालते हुए। और आप देखते हैं भारत में भी कई सारे हजारों प्रकार के लोग हैं, एनडी देसाई अपार के जो ओनर हैं अपार इंडस्ट्रीज, वो भी हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं अपने परिवार आदि के साथ। इवन एनडी देसाई और कई सारे ऐसे जो बड़े बड़े जो भौतिक लोग हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान से संबंध स्थापित करना है और जीवन रियली सुखमय और शांतिमय बनाना है, तो भगवान का ये जो पवित्र नाम है उसको स्वीकार करना ये परम आवश्यक है। तो आज हमने यही मूलभूत चर्चा की है। चौथी चीज़ रही डी का मतलब क्या है, डाइट, जो बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान को जैसे डॉक्टर परहेज हमें देता है तो उसी प्रकार से हमें जो भी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके करते हुए ग्रहण करें, जिसके द्वारा सारे जो जीवन के अमंगल हैं वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं, सारे दूषण खत्म हो जाते हैं और हम पवित्र जीवन अनुभव करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ABCD एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा और डाइट, हाँ, तो इस चीज़ को श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहुँचाया। श्रील प्रभुपाद अपने 70 साल की आयु में अमेरिका गए 1965 में। एक साल में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वहाँ जाकर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने 10 साल में 108 मंदिरों की स्थापना की और पूरे विश्व में ये भगवत भक्ति का प्रचार किया। आज पूरे विश्व में हर जगहों में मंदिर हैं और हर एक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। तो इस प्रकार से आज हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमने अलग अलग योगों का वर्णन सुना और भगवान की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की और कैसे भगवद गीता की जो शिक्षा है भक्ति योगा के माध्यम से हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या ट्रीटमेंट क्या है, भक्तों का संग करें, भगवद गीता रूपी ग्रंथ को पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा।